हमारी साधनाओं में बहुत इम्पोर्टेंट साधना है, कौन सी? है शरीरी होने की, उससे आगे थोड़ा, उसी में हाँ, और उससे आगे चलो, ठीक है सब। आत्मिक दृष्टि भी, और टोटल शब्द है इस सब के लिए, आत्मभिमानी होना। लोग ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, जब भी प्रश्न उत्तर होते हैं, बहुत होते रहते हैं ऑनलाइन आजकल, तो देही अभिमानी, आत्मभिमानी, अशरीरी, विदेही, और भी कुछ बोला करते हैं इन, हाँ बीज रूप, इन सब में क्या अंतर है? क्योंकि बाबा अलग अलग सब तो बोल ही देते हैं। अब ये देही अभिमानी जब हम ज्ञान में आए, इसका अर्थ हमें भी समझ में नहीं आया। देही शरीर को ही कहते हैं ना हर तरह से, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात पता चल गई। तो एक अभ्यास है हमारा देह से न्यारे होने का, बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास है। अपनी प्रैक्टिस में हमें इसको मुख्य स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये भी योग का आधा हिस्सा है ना। देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस बहुत मदद करेगी हमें। सबसे बड़ी मदद वो जो बाबा की मुरलियों में आता रहता है, अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। सर्वश्रेष्ठ गति है ये किसी मनुष्य की। तो देही अभिमानी होने के अभ्यास से देहधारियों के सारी जो दुविधाएं हैं ना, चाहे मोह हो, आसक्तियां हो पदार्थों में, कर्म बंधनों का कड़ा हिसाब किताब हो किसी से, उस सब से हम मुक्त होते जाते हैं। और आत्मविमानी किसे कहते हैं, मैंने बहुत बार बताया यहाँ भी, आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाए, यानी वो जीवन में आ जाएं। सातों गुण हमारे जीवन में आ जाए, अभी एक एक की अच्छी व्याख्या है। और विदेही, और बोलो कुछ शब्दों में बांधो। विदेही स्थिति, जनक की विदेही स्थिति मानी जाती है। हमें भी जनक की ज्यादा कहानी आती नहीं है क्या था, लेकिन जनक के लिए ये प्रसिद्ध है कि उसकी स्थिति विदेही थी, विदेही राजा था। इन सब बातों पर आज चिंतन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी। तो जनक विदेही था, राजा होते हुए विदेही। अब इसको एक्सप्लेन करें, राजा है, राजा के पास देखो अथाह धन संपदा, नाच गाना सारा दिन, मनोरंजन, खाने पीने के अथाह सुख साधन, राज चलाना, दूसरों का ध्यान भी रखना, बहुत प्रजा का कार्य व्यवहार चलाना, इन सब में विदेही का अर्थ है न्यारापन, उपराम, आसक्त न होना, मैं राजा हूं ये अभिमान न जाए, खान पान बहुत है उसमें आसक्त न हो जाए। राजा जो बहुत अच्छे होते थे अपने को सैनिक भी मानते थे, जंगल में भी रहना पड़े, जमीन पे सोना पड़े, घोड़े पे ही सोना पड़ जाए, सब प्रैक्टिस। सुना उन्हें घोड़े पे सो जाते थे बहुत सारे राजा, चलते चलते घोड़े को भी प्रैक्टिस थी उसी तरह चलने की, चलते चलते आराम कर लेते थे आधा घंटा। तो विदेही अर्थात उपराम, अनासक्त, न्यारे और प्यारे, कर्म करते हुए बोलो कर्म के प्रभाव से मुक्त, कर्म में इतने इन्वॉल्व नहीं हो गए कि कर्म ही रह गया बाकी सब भूल गया, क्योंकि ये बात प्राय सभी के साथ होती है। कर्म में जब मनुष्य बहुत व्यस्त हो जाता है तो कर्म के अलावा उसे और कुछ याद नहीं रहता है। इससे ऊपर कर्म भी कर रहे, लगन से कर रहे हैं, ये नहीं ढीला ढाला कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रभाव से मुक्त भी हैं। इसको कहते हैं निर्लिप्त स्थिति। अब देह से न्यारापन करेंगे हम सभी अभ्यास। लाल लाइट कर दो भाई, है गया है तो दे लाल लाइट। आज आपके कैमरे को कम काम मिलेगा भाई, अब अभ्यास ज्यादा करेंगे। चलें सभी अपने स्वरूप को देखेंगे मस्तक के मध्य में, अलग अलग अभ्यास करेंगे बहुत तत्परता से। मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा, मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, अपने स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट देखें। मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ, ये देह अलग, मैं इससे पूरी तरह अलग, देह जैसे कि है ही नहीं, मैं निराकार, मैं आत्मा उठ चली अपने स्वीट साइलेंस होम। मैं अपने परम धाम में अकेली बैठी हूँ, मेरा प्रकाश बहुत ज्यादा है, परम धाम से मैं अवतरित हुई अपनी देह में। विश्व कल्याण के लिए ओम शांति। संकल्पों के साथ अनुभव करते चलेंगे, प्रैक्टिस चाहिए। क्या क्या फायदे होंगे अशरीरीपन से? कर्म बंधन से मुक्त, ये बहुत बड़ी चीज है। जिन बांधेलियों की बाबा चर्चा करते हैं ना, अगर वो देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करें तो बंधन बहुत जल्दी छूट जाए। और कर्म भोग के प्रभाव से मुक्त, बहुत अच्छी अनुभव की बात होगी। किसी भी बीमारी में पीड़ा नहीं, बहुत बड़ी चीज है ये, पीड़ा से मुक्त। और क्या होगा भाई बताएं? नहीं, वो बाद में बोलो। एक इम्पोर्टेंट बात मुरलियों में आती रहती है गोपी, मुरलियों बहुत आती है वो। कर्म इंद्रियों पर विजय बहुत आती रहती है मुरलियों में। कर्म इंद्रियों पर विजय और लूज ड्रेस की बात आई थी अभी अभी, वरदान में थी ना, आज थी कल थी, आज ही थी लूज ड्रेस। वैसे आजकल तो लूज ड्रेस का जमाना रहा नहीं, आजकल तो टाइट से टाइट पहनते हैं लोग। लूज ड्रेस माना शरीर में बंधे हुए नहीं, तो जल्दी इससे डिटैच होके घर वापस जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियां हैं हमें इसकी। देवान छूटते छूटते कई सुंदर अनुभव होंगे, और सबसे सुंदर अनुभव होगा अतीन्द्रिय सुख का, जो बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए बाबा ने कभी मुरली में कहा, आप सबने सुना है या नहीं सुना, कुछ क्षणों का अतीन्द्रिय सुख। चलो विदेही स्थिति, हम सभी को उपराम होते चलना है। लोग इसका हिंदी अर्थ किया करते हैं, हिंदी शब्द ही है ये। बोलो क्या करते थे मंजू बहन? आपके जमाने की बात है ये, ऊपर रहकर आराम करना। ऊपर आराम की स्थिति में रहना, ये उपराम है। देखो हमारी एक स्थिति सबकी ऐसी आनी जरूर है कि जब हम चारों ओर से अनासक्त हो जाएंगे, ये स्थिति आएगी। जब हमारी तपस्या बहुत अच्छी चलेगी तो तपस्या का सीधा नाता रहता है अनासक्त वृत्ति से। कहीं भी अगर मनुष्य की आसक्ति होती है, चाहे वो खाने में हो जरा सी, आप देख सकते हैं जरा सी खाने में आसक्ति गई और बुद्धि योग टूटा। तो हर जगह से अनासक्त हमारे पास सब चीजें होंगी भी, लेकिन हम उनसे न्यारे, उनकी अधीनता भी नहीं। वो हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, उनमें बुद्धि ज्यादा न जाना, ये अनासक्त वृत्ति। होती है। आसक्ति वहाँ होती है जहाँ मनुष्य की उन चीजों में बुद्धि जाती है और उन चीजों की अधीनता हो जाती है कि वो चीज नहीं है तो हम सुखी नहीं है। अतिन्द्रिय सुख की बात मैं कह रहा था आपको, बाबा ने इसी हॉल में बहुत बड़ी बात कही थी, संगम का कुछ क्षणों का अतिन्द्रिय सुख एक पलड़े में रखो और स्वर्ग के सारे सुख दूसरे पलड़े में, तो भी अतिन्द्रिय सुख का पलड़ा भारी रहेगा। बहुत बड़ी चीज है। और एक नशे की बात, उस दिन ऐसे ही एक नशे की बात हुई थी मुरली में, एक ओर अक्षौणी सेना हो दूसरी ओर तुम अकेले, तो भी विजय तुम्हारी ही होगी क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है, स्वयं भगवान है। तो बड़ी बातें हैं ना, लेकिन ये तब होगा जब हमें नशा रहे। ये बाबा के महावाक्य उन लोगों के लिए भी हैं जो आज ग्रस्त में रहते हुए थोड़े कष्टों में रहते हैं, विज्ञान में लोग चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छे अच्छे कष्ट लोगों को होते हैं, कुमारों को भी, कुमारियों को भी, कई माताओं को भी, अकेले अकेले ज्ञान में हैं, दूसरी ओर परिवार के 9 लोग हैं। कल किसी का ऐसा ही फोन था, एक माता का, दूसरी ओर 9 हैं, मैं अकेली हूँ, मैं काम भी बहुत ज्यादा करती हूँ, पर वो सारा दिन ही बोलते हैं मुझे कुछ कुछ, और कहते हैं ज्ञान छोड़ो लसुन प्याज खाओ तो हम बोलेंगे नहीं, चैलेंज भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हें तो और शक्तिशाली बन जाना चाहिए कि वो सोच समझ के बोल रहे हैं, तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए बोल रहे हैं, तो तुम्हें तंग होना नहीं है। तो ये बात उन सब के लिए बहुत पावरफुल है ना, वो तो 10 ही हैं, हमारे साथ भगवान है, इसलिए कोई हमारी स्थिति को हिला नहीं सकता। अब विजय ये है कि कोई हमारी स्थिति को हिला नहीं सकता। अब देखो कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, देश में बढ़ रहा है, हमारे यहाँ भी शांतिवन में काफी बढ़ गया है, पिछले हफ्ते में तेजी से केस निकलते जा रहे हैं, बहुत लोग तो चेक करा नहीं रहे, चेक कराना वाना पॉजिटिव आना पक्की बात है। अब समस्या ये कि एक कमरे में तो कई रहते हैं भाई, अब वहाँ एक को हो तो दूसरों को खतरा, अब चेक कराना भी जरूरी हो गया, तो एक ऐसी दुविधा की स्थिति बन जाती है ना। फिर भी यदि हम बहुत नशे में रहेंगे, ऐसे नशे और देहभान से न्यारे, तो ये बीमारियां भी जल्दी ही ठीक होंगी। बीमारियां तो आती हैं, और भी इससे सीरियस तो कैंसर है, ये तो 2-4 दिन में ठीक ही हो रहा है, अभी तो भारत में ऐसा हो गया। आज भी मैं आते आते अखबार की एक लाइन पढ़ी, मेरे पास अभी आया था कि भारत में इतने केस, 10 लाख केस एक्टिव, लेकिन लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं, अस्पतालों में पता नहीं कितने लाख बेड खाली, ये दिखा रहे थे, घरों में ठीक हो रहे हैं। तो अगर हम बहुत अच्छे योग युक्त रहते हैं तो थोड़ी सी भी दवाई से हम ठीक हो जाते हैं, इसलिए अपने अंदर से किसी भी तरह का डर हमें निकाल के रखना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से ये तो सोचना ही चाहिए, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर है, शरीर को है, मुझे नहीं है। अच्छा अधिक से अधिक हुआ, मान लो शरीर छूट गया, ठीक है, अपने बाबा के पास पहुंचेंगे, हल्के रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोविड भी सोचेगा ये तो घबरा नहीं रहे, इन्हें छोड़ो, किसी डरने वाले के पास पहुंचो भाई। तो हमें निर्भय बहुत रहना और ऐसे नशों में रहना है, ये नशे हमें उपराम कर देते हैं। मुझे एक चीज और याद आई, वो मैं आपको कहूं, हमें वरदान लेना है बाबा से कोई भी, मैंने यहां क्लासेस तो कराई हैं, उस पे 1-2 वरदान लेने हैं जरूर बाबा से, जो हमें विनाश काल में काम आए, हमारे लिए भी और विश्व की सेवा के लिए भी। मुझे याद है मैंने 5 वरदानों पे यहाँ चर्चा की थी जो विश्व सेवा में हमारे काम आएंगे। लेकिन मैं आपको जिसलिए मुझे ये बात याद आ गई वो याद दिलाना चाहता हूँ, जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। हमारी बुद्धि वैसी योग्य चाहिए जिसमें वरदान धारण हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप इस पर विचार भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वरदान सबसे बड़ी चीज होती है संसार में। भक्ति में तो किसी किसी को प्राप्त हुए थे, किसी किसी को, भक्तों में भी जो सन्यासी उच्च कोटि के थे उनमें से किसी को मिलते थे वरदान, जिसे वो सिद्धियां कहते थे, बड़ी भारी सिद्धि। जैसे गोरखनाथ हुए, बाबा गोरखनाथ, बहुत ज्यादा शक्तियां थी उनके पास। एक चीज में उनकी कहानी पढ़ा करता था कि बच्चों ने छोटे छोटे पत्थर मार के आम तोड़ लिए, वहां से गुजर रहे थे गोरखनाथ, बच्चे डर गए उन्हें देख के, कहा ये आम तुमने तोड़ लिए पर इस पेड़ का तो मालिक कोई और है, बच्चों तुमने तो गलती कर दी, इन पेड़ को वापस, इन आमों को वापस लगा दो पेड़ पर। अरे बच्चे देखने लगे ये टूटे हुए आम वापस कैसे लगेंगे, एक दो ने फेंके वो तो वापस गिर गए। गोरखनाथ ने कहा लाओ मुझे दो, और एक एक को जो फेंका तो चिपकते गए जहां से टूटे थे। ये उनकी शक्तियों का सिद्धियों का वर्णन दिखाया इस तरह। कईयों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी, आकाश गमन कर सकते थे वो शरीर सहित, लेकिन ये सबको नहीं, लाखों सन्यासी समय में भी 2-3 को बस, ज्यादा नहीं। हमें वरदान मिलते हैं, सिद्धियों से भी बड़ी चीज होती है वरदान। इनको धारण करने के लिए बुद्धि बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली, जो बहुत ईश्वरीय नशे में रहती हो उनको मिलते हैं ये। इसलिए बाबा ने बोला ये बात, जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। सोचना सभी और करना इसको। तो वरदान भी लेंगे हम बाबा से सवेरे रोज, और वो धारण रहे हमारे अंदर। वरदान ये नहीं होते जो मुरली में आते हैं, वो अलग चीज है। सवेरे बाबा मस्तक पर तिलक लगाकर कुछ वरदान देते हैं, लेकिन हम लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहें, स्वमान के साथ ईश्वरीय नशा, जैसे कौन मिला इस जीवन में, कौन पढ़ाने आता है हमें रोज, कौन उठाता है हमें सवेरे, कौन ब्रह्मा भोजन खिला रहा है, किसकी गाइडेंस में हमारा जीवन चल रहा है। ये नशे हैं, स्वमान दूसरी चीज होती है, ईश्वरीय नशे। घर बैठे भगवान मिल गया, भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया, वो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आ गया, वो हमारा साथी बन गया। ये नशे, सर्व खजानों का दाता हमारा साथी, अधिकार में दे रहा ये सब तुम्हारे हैं। ये नशे हमारी बुद्धि को योग्य बना देते हैं वरदानों को धारण करने के। तो इसकी बहुत जरूरत है। साकार में जब बाबा थे और उसके बाद अव्यक्त होने पर भी कुछ साल तक स्वमान की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, आसक्तियों की भी नहीं हुई थी। मुझे याद है इसी हॉल में बाबा ने 8 शक्तियां गिनाई, लिखाई सबको, ये आठ शक्तियां जिनके बाद में चित्र बने, ये तुम्हें धारण करनी है। तो स्वमान की चर्चा तो बहुत कम थी। नशा, तुम्हें ईश्वरीय नशे में रहना है। और मुरलियों में रोज आता है, हम सुनते ही हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमें राजाई मिल रही है, ये पढ़ाई राजाई के लिए है। ये स्वमान नहीं कहलाते, ये नशे कहलाते हैं। खुमारी, ईश्वरीय खुमारी, इसको ईश्वरीय नशा कहते हैं। इससे हमारी बुद्धि शांत भी हो जाती है, उसमें अगर कोई गंदगी हमने भरी है किसी जन्म में भी, वो भी साफ हो जाती है। इस बात को सभी ध्यान से समझ लेंगे। सफाई करनी है ना बुद्धि की, इससे ऑटोमेटिकली सफाई हो जाएगी, सब चीजें जल के जैसे नष्ट हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा अनुभव होगा, वरदानों की धारणा हो जाएगी। अब हम, मैं भी आत्मअभिमानी की चर्चा न करके अभ्यास ही कर लेते हैं। और अभ्यास में हम एक एक गुण के लिए कुछ कुछ संकल्प रखेंगे और उनको हम स्वीकार करेंगे। देखो, यहाँ आत्मअभिमानी होने की अभ्यास का लक्ष्य है कि एक एक जो गुण है, मान लो आत्मा शांत स्वरूप है, तो ये शांति हमारे अंदर भरी हुई है, इसे हम स्वीकार करेंगे। ऐसे हर एक गुण का, रेड लाइट, चलिए फिर से अपने सिंहासन पर बैठेंगे सभी राजा। संकल्प करें मैं मन बुद्धि कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मैं इस देह से न्यारी हूँ, जैसा शरीर मुझे ये है वैसे ही अनेक शरीर मैंने लिए छोड़े हैं। एक समय था मैं देव शरीर में थी, देह भी संपूर्ण पावन था। कितने ही जन्म मैंने देव रूप में लिए, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। संपूर्ण ज्ञान से भरपूर हूँ। संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश मुझ में समाया हुआ है। इस प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं प्रेम स्वरूप ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हूं। मुझे भगवान का प्यार मिला और मैं सभी को प्यार बांटने में सक्षम हूं। घृणा और नफरत का मेरे चित्त में कोई स्थान नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। शांति मेरा गले का हार है। मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी शांति मेरी शक्ति है। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ। बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। अपने प्राणेश्वर शिव बाबा को पाकर मैं सुखों से भरपूर हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। सभी विकारों से मुक्त निर्विकारी हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूँ। मेरी पवित्रता इस संसार के लिए वरदान है। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं, और ये शक्तियां मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बना रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, पांच हजार वर्ष के बाद भगवान से मिलकर मैं आत्मानंद विभोर हो गई, मैं भगवान की पालना में पलने वाली, रोज उसको जी भर के देखने वाली, आनंद से भरपूर आत्मा हूँ। वे मेरे लिए ताज और तिलक लेकर आए हैं, वे मेरे घर में मेहमान बनकर आ गए हैं, वे मुझ पर मेहरबान हुए हैं, मेरा मन आनंद सागर में लहरा रहा है, परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, ओम।